ओम शांति। जुलाई मास विशेष हम सबको अपनी मीठी दीदी मनमोहिनी की याद दिलाता है। यहाँ कोई हैं ऐसे जिन्होंने दीदी मनमोहिनी की पालना ली हो? कोई नहीं है। क्योंकि दीदी 1983 जुलाई में अव्यक्त हुई और मुझे दीदी के साथ पार्ट बजाने का सौभाग्य 11 वर्ष मिला। 72 से बहुत समीपता से दीदी को देखा, उनकी पालना ली और उनकी बहुत सारी मीठी मीठी शिक्षाएं सुनी। वो भाषण नहीं करती थी लेकिन भाषणा देती थी, बहुत प्यार से इशारे देती थी। तो मैं विषय को स्पष्ट कहने के साथ दीदी की 3 बातें आपको सुना देता हूं। अगर कोई अपने आप को सचमुच सुधारना चाहता है, अपनी कमी और कमजोरियों को निकालना चाहता है, तो उसके लिए दीदी का एक मंत्र याद करना। दीदी कहती थी, इन क्लासेस सुनने से, मुरलियां सुनने से सुधार नहीं आएगा। कैसे आया? कहती थी, अपने आप के टीचर खुद बनो, अपने आप को पढ़ाओ, एकांत में चले जाओ, अपने आप से बातें करो। जो अपने आप को पढ़ाना जानते हैं वो अपने आप को सुधार सकते हैं। अगर यही 2-3 प्रश्न अपने आप से हम पूछें कि बाबा आपने मुझे क्यों चुना है, मैं आपका किस लिए बना हूं और मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूं जो भी छोटे मोटे संस्कारों की बातें आती हैं उन सब को हम सहज क्रॉस कर सकते हैं। तो पहली शिक्षा उन्होंने यही दी हमें कि आप अपने आप को खुद पढ़ाओ, अपने आप को देखो। मैं जो हूं जैसा हूं अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो, तो सहज अपना सुधार कर सकते हो। दूसरी बात, एक दिन मैं ऐसे ही सामने गया तो बहुत प्यार से अपने बाजू में बिठा के कहती है, तुम ब्रह्मा कुमार हो ना? तो मैंने कहा, हाँ दीदी ब्रह्मा कुमार तो हैं। हमने कहा, शायद कोई बात आज ब्रह्मा कुमारों के शिक्षा के संबंध में मुझे कहनी होगी, इसलिए दीदी बहुत प्यार से पूछती है, तुम ब्रह्मा कुमार हो ना? हमने कहा, हाँ दीदी ब्रह्मा कुमार हैं। फिर कहती है कि ब्रह्मा कुमार तो आजकल दुनिया में बहुत हैं, सफेद ड्रेस पहन ली, बैज लगा दिया, मैं ब्रह्मा कुमार बन गया। इसको ब्रह्मा कुमार नहीं कहते, सच्चे ब्रह्मा कुमार वो हैं जो तपस्वी कुमार हैं। तो तुम सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं बनना लेकिन तपस्वी कुमार बनना। तो तपस्या क्या है? कहा, जो तपस्वी कुमार है ना, उनकी एक एक कर्म इंद्री बहुत शीतल स्वच्छ शांत हो जाएगी, वो देह भान को गलाएंगे, तप से तपस्या से देह अभिमान को गला देंगे। तो दीदी ने मुझे कहा कि आज से ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार बन करके रहना, एक एक इंद्रिय को तपा देना। फिर तीसरी शिक्षा दी, नए नए हम आए थे, कहती है संघ की संभाल रखना, तो मुझे भी संकल्प चले, संग तो बाहर का खराब होता है, यहाँ क्या है, यहाँ हमें कौन से संग की संभाल करनी है। कहती यहाँ भी कई ऐसे हैं जिनका अपनी स्व उन्नति पर ध्यान नहीं है, जो स्वचिंतन नहीं करते, सवेरे अमृत वेले योग नहीं करते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं, सारा दिन सेवाएं की, भोजन किया, नींद किया, ये कोई ब्राह्मण लाइफ नहीं है, समर्पित लाइफ नहीं है। इसलिए पर चिंतन पर दर्शन करने वाले बाबा के यज्ञ में, बड़ों के किसी भी बात में क्वेश्चन उठाने वाले अगर कोई ऐसे हैं जो सारा दिन झरमुई जगमुई करते हैं, पर चिंतन पर दर्शन करते हैं, तो इस संग से अपनी संभाल करना, क्योंकि संग तारे को संग डुबोए। अगर अच्छा संग करोगे, अच्छों का संग करोगे, तो पार हो जाओगे, और अगर कोई ऐसे कमजोर का संग कर लिया तो डुबो देगा। ध्यान देना, ये दीदी की बहुत मीठी शिक्षाएं उस समय हम सबको मिलती, और उसके आधार से ही आज पूरा टेंशन रहता है कि मैं बाबा का बच्चा ऐसा तपस्वी मूर्त बन करके रहूं। तपस्या के लिए आत्म बोध की जरूरत है, आवश्यक आत्म बोध, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बिना आत्मा के ज्ञान के, आत्मा की समझ के, आत्मिक स्थिति में स्थित होने के, तपस्या नहीं की जा सकती। संगम ऊपर जिस रीति से हम सभी ने तपस्या की है, भक्ति मार्ग के अंदर उसकी यादगारें बहुत अच्छी तरह से चलती आई हैं। भक्ति मार्ग में द्वापर युग से जिन तपस्वियों ने तपस्या की, उनकी भी वही विधियां रही, उन्होंने स्थूल रूप दे दिया, और संगम पर हम सब ने बहुत सूक्ष्म रीति से तपस्या के लिए अपना आसन चुना, स्थान चुना, स्थिति बनाई और तपस्या की। हम सबको तपस्या के लिए बहुत अच्छी गुफा मिली है। जब बैठते हो तो उस गुफा में बैठते होंगे, योग में जब बैठते हैं, ये हमारी तपस्या क्या है, ये योग तपस्या है। हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, इस तपस्या के अंदर सबसे पहला हमारी गुफा है भ्रकुटी गुफा। जब इस भ्रकुटी गुफा में हम बैठते हैं शांत एकांत में, तो इस गुफा में बैठते ही बाबा के साथ संबंध जुट जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो सबके पास ये गुफा तो है, जंगल में इधर उधर गुफाएं ढूंढने की जरूरत नहीं। जब भी योग अभ्यास में बैठो, अपने इस गुफा में चले जाओ, मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन इस गुफा के अंदर विराजमान हूँ। फिर कर्म में आओ, कर्मयोगी जीवन के अंदर अंतर्मुक्ता की गुफा है, गुफा है ना अंतर्मुक्ता की, अंदर ही अंदर बाबा से बातें कर रहे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं। इस अंदर की गुफा में रह करके कर्मयोगी बन जाओ, फिर किसी से बातचीत करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो रूहानियत की गुफा है, आत्मा को देखना, आत्मा के गुणों पर नजर रखना, उनकी विशेषताओं को देखना। तो सवेरे से रात तक हमें बाबा ने बहुत अच्छी तीन गुफाएं दे दी, भ्रकुटी गुफा है, फिर कर्म में अंतर्मुक्ता की गुफा है, संबंध संपर्क में रूहानियत गुफा है। नियत में ही रूह को देखना, शरीर को देखना नहीं, आत्मबोध है। अगर आत्मा को कहीं सही पहचान मिली है कि आत्मा ये खेल रही है, पार्ट बजा रही है, इसका ये बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट है, मैं भी इन कर्मिंद्रियों के द्वारा बहुत अच्छा पार्ट बजाऊं, तो अंतर्मुक्ता की और रूहानियत की गुफा में रहना है। अब उसके लिए आसनी भी होती हैं, तपस्वी लोग आसनी पर बैठ करके तपस्या करते हैं, और बाबा ने हम सबको कमल फूल का आसन दिया। भक्ति मार्ग के अंदर कमल की जगह पर ये पद्म आसन लगा लेते हैं, शरीर को ही जकड़ करके टांग पर टांग कड़ा करके कमल आसन को पद्म आसन में बदल दिया। बाबा ने हम सबको कमल आसन पर बिठा करके तपस्या कराई है। क्या है कमल आसन? सबके साथ रहो, संबंध संपर्क में रहो, परिवार के बीच में रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कोई भी बुराई का कीचड़ पानी आपके ऊपर ना आ जाए। कमल समान न्यारे और प्यारे रहो। कमल पर वैसा बैठा जा सकता है क्या? फूल पर तो कोई बैठ नहीं सकता, वो भी निशानी है बहुत हल्केपन की। अगर कोई तपस्वी मूरत बनना चाहता है, तपस्या यथार्थ करना चाहता है, तो उसे बहुत हल्का बनना पड़ेगा। कोई भी बोझ अगर है तो उसका योग नहीं लगेगा, तपस्या नहीं कर सकता है। तो मन और बुद्धि बहुत लाइट, बहुत हल्की है, तो कमल आसन हमें मिल जाता है। फिर दूसरा आसन बाबा ने हमें दिया है एक रस स्थिति का आसन। एक रस स्थिति, जब बैठो तो एक के रस में, एक के प्यार में लौलीन हो जाओ। ये एक रस स्थिति का आसन है। और तीसरा पार्ट के आसन है साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन। करते होंगे अभ्यास, क्योंकि अगर साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं है तो क्या होगा? हलचल में आ जाएंगे, ये क्यों ऐसा करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, कितने सारे प्रश्नों में आत्मा उलझ जाती है। इसलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छा आसनी दी है, बच्चे साक्षी दृष्टा के आसन पर विराजमान रहो। हर आत्मा अपना अपना बहुत अच्छा ड्रामा के अंदर पार्ट प्ले कर रही है। इसका एक्यूरेट पार्ट है, ये विलियन का भी पार्ट जो है इसका भी एक्यूरेट है। हलचल में नहीं आओ, क्वेश्चन नहीं उठाओ, साक्षी होकर के देखो और देखते हुए बहुत न्यारे और प्यारे रहो। अब स्थान कैसे तपस्वियों ने चुना है? बाबा ने स्थान भी बहुत अच्छे अच्छे हमें बताए हैं, कहाँ बैठो। तो जैसे गुफा दी है ऐसे ही दूसरा स्थान दिया है, बच्चे वृक्ष के तने में जड़ में बैठो। आपने देखा होगा जितने लोगों ने तपस्या के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं, अधिकतर वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की। आप गया में, सारनाथ में, कहीं भी जाएंगे, जो हमारे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी की तपस्या यादगार बने हुए हैं, वहां पर वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने हम सभी तपस्वी बच्चों को कहाँ बिठाया? कल्प वृक्ष के, सृष्टि वृक्ष के तने में बिठाया है। बीज रूप बाबा है, मात पिता, आदि पिता, आदि माता, कपल मुनि, कामधेनु माँ तपस्या कर रहे हैं, और हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आओ मेरे बाजू में बैठो, पूरे सृष्टि चक्र को, इस सृष्टि झाड़ को देखो और बहुत अच्छी इसको सकास दो, इसको दृष्टि दो, आप इस वृक्ष के पूर्वज आत्मा हो। पूर्वज के समान में स्थित होकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करो। फिर तपस्वी लोग कभी कभी एकदम जंगल में, पहाड़ों पर चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं। कई तपस्वियों ने हिमालय में तपस्या की, बहुत अच्छी अच्छी सिद्धियां वहां से लेकर के आए। बाबा भी हम बच्चों को कहता है हिमालय चोटी पर तो जाना नहीं है, लेकिन आपको बहुत ऊंची चोटी पर बाबा ने बिठाया है, परम धाम की ऊंची चोटी पर आके बैठ जाओ। जाते हो कि नहीं? सभी उड़ने का अभ्यास करो। बहुत अच्छे साधन बाबा ने हम सबको दिए हैं। जब तपस्या करते हो अपने आत्मिक रूप में स्थित, अपने मन और बुद्धि के विमान से, बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द दिया है, मन एक उड़न खटोला है और बुद्धि आपका बहुत अच्छा विमान है। तो सबके पास उड़न खटोला भी है, उसको पेट्रोल नहीं चाहिए, वो तो संकल्प की गति से चलता है। ऐसा बुद्धि का विमान है जो यहाँ बैठे हैं, साकार लोक से एक सेकेंड में हम अपने अव्यक्त लोक में, सूक्ष्म लोक में पहुंचते हैं। और सूक्ष्म लोक से अपने परम धाम घर में पहुंच जाते हैं। वहां बैठ करके ऊंची स्थिति में पूरे ग्लोब को सकाश देते हैं, लाइट देते हैं। तो तपस्या के लिए संगम युग पर बाबा ने अपने बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी समझ दी। वृक्ष के नीचे इसीलिए बिठाया है कि बच्चे पूरे वृक्ष का ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए। शून्य की तरफ तपस्या नहीं करना। कई लोग जब बैठते हैं ना तो बिल्कुल संकल्प को एकदम शांत करने का अभ्यास करते हैं और शांत करते करते शांति धाम में चले जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई लोग योग में बैठते हैं और निद्रा की गोदी में चले जाते हैं। जो आत्म बोध है, आत्म स्थिति है, जो उसका चिंतन है, मैं जो हूं जैसा हूं, अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने ऊंचे स्वमान का चिंतन करो, बाबा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या से क्या बना दिया, कितना श्रेष्ठ पार्ट दिया है, हीरो पार्ट धारी बनाया है, पूरे कल्प के अंदर हम सबका कितना महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान ने हमें इस विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त बनाया है। बहुत ऊंचे स्वमान में स्थित होंगे, क्योंकि योग के लिए तीन चीजें और चाहिए। एक बहुत आंतरिक खुशी चाहिए, नशा चाहिए। अगर खुशी और नशा नहीं है तो कभी भी आप योग के तपस्या के अच्छे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। बहुत खुशी के संकल्प इमर्ज होने चाहिए। कौन मिला है, किससे बातें कर रहा हूं, किसने हमें ऐसी जीवन दी है, कौन मुझे गाइड कर रहा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, बहुत खुशी और नशे के संकल्प करो और बहुत हल्के बन जाओ। सब जवाबदारियां संगम युग पर बाबा कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन करके आया हूं, तो मुझे अपनी सब जवाबदारियां, अपनी सब चिंताएं अर्पित करो। अगर चिंताओं को अर्पित नहीं किया है, बाबा को दिया नहीं और बोझ लेकर के चल रहे हैं, योग नहीं लगेगा। इसलिए संगम पर जिन बच्चों ने बाबा को यथार्थ पहचाना और कहा बाबा ये सब तेरा है, तू जवाबदार है, मैं क्यों चिंता करूं, तुम बैठा है, बाबा कहता मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत कर। तो ऐसे एक निश्चय, नशा और हल्कापन अपने आप आत्मा को उड़ा ले जाता है। तीसरी चाहिए लगन, बहुत प्यार बाबा के प्रति, इतना टूट प्यार जिसको कहते हैं। लगन लगी तो विघ्न नहीं रहते, जहां लगन है वहां विघ्न ठहरते नहीं है। तो लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो। लगन कैसे उमर अंदर से इमर्ज हो जाएगी, बाबा आपने मुझे इतनी सारी प्राप्तियां कराई हैं, अखुट भंडार दिया है। चिंतन करो कभी कभी, मैं कभी कभी बैठता हूं कहता हूं वाह वाह क्या पढ़ाया है, सारी दुनिया का ज्ञान, इतिहास भूगोल सब कुछ पढ़ा दिया, मुझे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, मैंने कोई लौकिक किताबें नहीं पढ़ी, और बाबा आपने मुझे पढ़ा करके त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नॉलेज फुल बना दिया, ज्ञान का भंडार दे दिया, ज्ञान सागर ने जो प्राप्तियां कराई हैं, ज्ञान का चिंतन करो। इतने दिव्य गुणों से बाबा ने हमें सजाया है, श्रृंगारा है, कितने दिव्य गुण जीवन में आ गए, कितनी हर्षित मुक्ता है, पवित्रता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, निर्मलता है, निरहंकारिता है, की माला बाबा ने हम सबको पहना दी, गुण मूरत बना दिया, गुणवान बना दिया। तो जब हम इन प्राप्तियों को याद करते हैं कि बाबा आपने ज्ञान का विनाशी खजाना दिया, गुणों का विनाशी खजाना दिया, शक्तियों का विनाशी खजाना दिया, और संगम पर कलयुग के अंदर अपने बच्चों का इतना ऊंचा चरित्र बना दिया, जब सबका चरित्र दुनिया में गिरा हुआ है, बाबा के बच्चे चरित्रवान हैं, उनकी दृष्टि पवित्र शुद्ध है, उनकी भाषा बड़ी मधुर है, नम्रचित है, उनकी वृत्तियां बड़ी अनासक्त है। चरित्रवान किसको कहते हैं, चरित्रहीन किसको कहते हैं, तो भेंट मिल जाएगी आपको। जो दुनिया के अंदर कामी पुरुष हैं, इतने बड़ा चरित्र इसका गिरा हुआ है, जो क्रोधी हैं उनके लिए कहते इसका चरित्र ठीक नहीं, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, अपशब्द बोलता है, हिंसा पर उतर आता है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। और जो लोभ वृत्ति के कारण पेट के लिए नहीं लेकिन पेटियां रहा है, लोभ वृत्ति वाले को भी कहते हैं इसका भी चरित्र ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट आचरण है इसका, कमाई का साधन इसका गलत है। तो बाबा ने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाया है संगम पर, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, आप अगर इन प्राप्तियों को याद करो एकदम प्यार के आंसू आ जाएंगे, नैन गीले हो जाएंगे, बाबा के प्यार में खो जाएंगे, अपने आप लगन बढ़ जाएगी। तो हम सब लगन को बढ़ाकर विघ्नों को हटा करके तपस्वी मूर्त बन जाते हैं। और जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तपस्या क्या है? तपस्या का आधार क्या है? त्याग। समय की सीमा है, मैं थोड़े शब्दों में बताता हूं। तपस्या का आधार है त्याग, और त्याग है ही देह भान का त्याग। देह भान को गलाना है। हम सब इतना पक्की तपस्या करें आत्मिक स्थिति की, भ्रकुटी के बीच में बैठ करके देह भान गल जाए। कहते पहाड़ों पर पांडव गल गए। अब उस पहाड़ पर कोई शरीर से गलेगा तो सुसाइड हो गई, लेकिन देह भान को आत्मा अपने आप में गला दे, जरा भी अभिमान ना आए। भान ही न रहे तो अभिमान कहां से आएगा? तो कहते हैं देह भान को गलाना है, अभिमान को भगाना है, और अहंकार को मारना है। कहते हैं अहंकार को मारो। तो हम सब जितना जितना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रह करके भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा को याद करते हैं तो देह भान से मुक्त हो जाते हैं, अभिमान अपने आप समाप्त हो जाता है। अभिमान क्या है? मैं जो आज बाबा ने कहा, कितने हंगामे, कितने झगड़े, क्या कर लेते हैं लोग अहम के कारण। तो ऐसे अहम को हम सब मारने रहे, मैं समाप्त हो जाए, इतना आत्मा नम्र चित, निर्माण चित, सरल चित, ऐसी योगी लाइफ बन जाए, ऐसी जीवन बन जाए, इसके लिए आत्मबोध आत्म स्थिति बहुत आवश्यक है। इस पर हम बहुत ध्यान दें। हमारी तपस्या है ही आत्म अभिमानी बनने की। त्याग है देह अभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। तो सब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर लगन की गुनी को प्रज्वलित करो, दृढ़ता का संकल्प लो, एकांत वास करो, ये तपस्वी जीवन बन जाएगी बस। तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसे तपस्वी मूर्त बन करके विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने। ओम शांति।
तपस्वी वही तपस्वी।